ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಚೌಥ ಸ್ಕಂದ 28ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ 47 ಶ್ಲೋಕ ಬಾರೆ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಚತಿ ದೀನಾಂ ಅಬಂಧುಂ ವಿಕ್ಲವಾಶ್ರುಭಿಃ ಸ್ಥನಾವಾಸ್ಯ ಅಸಿಚ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸಾ. ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಚತಿ ದೀನಾಂ ಅಬಂಧುಂ ವಿಕ್ಲವಾಶ್ರುಭಿಃ ಸ್ಥನಾವಾಸಿಚ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸಾ. ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಚತಿ ದೀನಾಂ ಅಬಂಧುಂ ವಿಕ್ಲವಾಶ್ರುಭಿಃ ಸ್ಥನಾವಾಸಿಚ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸಾ. ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಚತಿ ದೀನಾಂ ಅಬಂಧುಂ ವಿಕ್ಲವಾಶ್ರುಭಿಃ ಸ್ಥನಾವಾಸಿಚ್ಯ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸಾ. ಆತ್ಮಾನಂ ಶೋಚತಿ ವಾಸುರ್ಭಿ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸ. ಆತ್ಮಾನ್ ವಿಪಿನೇ ಸುಸ್ವರಂ ಪ್ರರುರೋದಸ. ಆತ್ಮಾನ ಅಬಂಧುಂ ವಿಕ್ಲವಾಶ್ರುಭಿಃ ಮಾತಾಜಿ. ಆತ್ಮಾನಂ ಅಪ್ನೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಶೋಚತಿ ವಿಲಾಪ ಕರ್ತಿ ದೀನಂ ದುಃಖಿಯಾರಿ ಅಬಂಧುಂ ಬಿನಾ ಮಿತ್ರಿಕೆ ವಿಕ್ಲವ ಭಗ್ನ ಹೃದಯ ಅಶ್ರುಭಿ ಆಂಸೋಂ ಸೆ ಸ್ಥನೌ ಉಸ್ಕೆ ಸ್ಥನ್ ಆಸಿಚ್ಯ ಭಿಗೋತಿ ವಿಪಿನೆ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಸುಸ್ವರಂ ಜೋರ್ ಸೆ ಪ್ರರುರೋದ ರೋನೆ ಲಗಿ ಸಾ ವ. ಅನುವಾದ ತಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಪಾದ ದ್ವಾರ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಪಾದ ಕೆ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಅಕೇಲಿ ತಥಾ ವಿಧವಾ ಹೋಕರ್ ವಿದರ್ಭ ಕಿ ಪುತ್ರಿ ವಿಲಾಪ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ ಉಸ್ಕೆ ಆಂಸು ನಿರಂತರ ಝಡ್ ರಹೆ ಥೇ ಜಿಸ್ಸೆ ಉಸ್ಕೆ ಸ್ತನ್ ಭೀಗ್ ಗಯೆ ಥೇ ಔರ್ ವೋ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಸೆ ರೋ ರಹಿ ಥಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರತೀಕಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಮೇ ರಾನಿ ಕೋ ರಾಜಾ ಕಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಅತಃ ಜಬ್ ಗುರು ಕಾ ಮರ್ತ್ಯ ಶರೀರ ಛೂಟತಿ ಹೈ ತೋ ಶಿಷ್ಯ ಕೋ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ರೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಾ ಕೆ ಮರ್ನೆ ಪರ್ ರಾನಿ ರೋ ರಹಿ ಥಿ. ಕಿಂತು ಶಿಷ್ಯ ತಥಾ ಗುರು ಕಭಿ ವಿಲಕ್ ನಹಿ ಹೋತೆ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ಕೆ ಆದೇಶೋಂ ಕಾ ದೃಢತಾ ಸೆ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾ ರಹತಾ ಹೈ ತಬ್ ತಕ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಕೆ ಸಾಥ್ ರಹತಾ ಹೈ. ಯೆ ವಾಣಿ ಶಬ್ದೋಂ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಕಹಲಾತಿ ಹೈ. ಭೌತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ वपु कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करें। जय राधा रास विहार जी की जाए, सीताराम लक्ष्मण की जाए, गौनिताय की जाए। भौतिक उपस्थिति वप कहलाती है। जब तक गुरु भौतिक रूप में उपस्थित रहे, शिष्य को चाहिए कि गुरु के भौतिक शरीर का सेवा करें। और जब उसका भौतिक शरीर ना रहे तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का पालन करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सेगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सेगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकत्र समस्त भक्तगणों का हरे कृष्णा। यहीं पर वरिष्ठ भक्त है, प्रपाल के शिष्य है, वैष्णव यहाँ, सभी के लिए आशीर्वाद का याचना करते हुए कुछ बोलने का अधिकार दें ताकि कुछ मैं बोल सकूं। आज का जो प्रसंग है, ये कथा कैसा चल रहा, किन का कथा चल रहा इस समय? मलय ध्वज का वो कथा किन के बारे में आया? प्राचीन भरी का। ये प्राचीन भरी ध्रुव महाराज का 12वां संत जनरेशन है, ध्रुव महाराज से उसी वंशज है। स्वयं भूमन का कितने पुत्र थे? दो, प्रियव्रत उत्थानपाद। प्रियव्रत बचपन में ही ये राजकाज में उसको कोई इच्छा नहीं था, तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान के लिए चला गया था, तपस्या में लीन होया। जिनका गुरु नारद महर्षि होता है और क्या कर सकते हैं। और उत्थानपाद का दूसरा पुत्र ध्रुव महाराज, उसका पश्चात जो है कई वंशज चलते हैं। इसमें अंत में पृथ्वी महाराज का बाप सुने हैं, सबको याद है ना पृथ्वी महाराज। फिर पृथ्वी महाराज का बड़ा लड़के का नाम विजयदाश्व, क्योंकि यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा इंद्र लेकर जा रहा था, उसको छुड़ा कर ले आया था, इसलिए उसको उपाधि मिला विजयदाश्व। परंतु उसको इंद्र को मारने का शक्ति था, फिर भी इंद्र को मारा नहीं है। इंद्र चोरी करके ले जा रहा था, फिर भी इंद्र को मारा नहीं है, इंद्र को छोड़ा था। इस कारण इंद्र ने बड़ा संतुष्ट होकर उसको एक नाम से उपाधि से उसको दिया था, उसका नाम अंतर्धान। उसके विद्या भी था, अंतर्धान नाम भी दे दिया उसको। फिर उनका वंश में आ जाता है अंग महाराज भी आ जाता, सॉरी अंग तो उनका पिताजी है, उनका हविरधानी। फिर उनका पश्चात जो है फिर भरी सात बोला जाता है, उन्हीं का नाम आगे जाकर प्राचीन भरी बोला जाते हैं। और वो इतना प्रभावशाली राजा था, कर्मकांड में तो बड़ा दक्ष था ही, योग विद्या में भी उसका प्रवीण था, पूरा समस्त जो अष्ट सिद्धि बोलते ना योग शक्ति का जो सिद्धि है वो सभी उसको प्राप्त था, और इसके लिए उसको प्रजापति बन गया था। जब प्राचीन भरी जो बरहिसात राजा बनने के बाद जो है पूरा कर्मकांड में लग गया, इतना कर्मकांड में लगे कि पूरा धरती के ऊपर कुशों का ग्रास बिछ गया था, इतना यज्ञ किया, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ करते रहे, और उस यज्ञ में कई पशुओं को बलिदान देना पड़ता है, सभी यज्ञ बलिदान का नहीं, कुछ यज्ञ बलिदान का है। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि यज्ञ का बलिदान नहीं, पशु का बलिदान हर एक में नहीं है, हर एक पशु मनुष्यों में रहे हुए एक एक गुण को रिप्रेजेंट कर देता है। तो जब नारद महर्षि देखा कि ये राजा जो है ऐसे वंश ध्रुव महाराज का वंशज होते हुए भी ऐसे कर्मकांड बन चुका है, इतना प्राणियों का हिंसा हो गया, उससे बड़ा दया आया नारद महर्षि को, आकर प्राचीन भरी को ब्रह्म ज्ञान देना चाहता था। बताइए राजन, आप किस काम में जुड़े हो, केवल कर्मकांड इतना कर रहे हो, आपको मालूम है जिस प्राणी को जिस जानवर को आप मारा है वो अभी अंतरिक्ष में आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जब आप आएंगे उसका बदला लें, जिस प्रकार घात चेरिया से उनके हिंसा हुआ उसके लिए बड़ा क्रोधित होकर अंतरिक्ष में आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं कर्मकांड से मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है ये कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड से आपको स्वर्ग मिल सकता है परंतु स्वर्ग से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। मनुष्य जन्म का उद्देश्य एक ही है, कैसा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, और कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उद्धव को समझाते, हृदयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूले न भस्वतारितम भवान पुमाब्धि नातरेत आत्मा। उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण जो है अपना लीला समाप्त करके अपना गोलोक धाम जाने के लिए तैयार हो गया था, जब उद्धव को पता चला जाकर पूछते हैं भगवान मुझे भी आप साथ ले जाइए, बोलता है नहीं तुम्हारे आने का भी समय नहीं, बद्रीनाथ जाइए आप तपस्या करो। इसलिए जहाँ जो बद्रीनाथ का दर्शन किया है दिखा होगा बद्री नारायण जी के साथ है, बाएं साइड में उद्धव जी का मूर्ति है। तो उस समय कम से कम ब्रह्म ज्ञान देने का याचना कर रहे थे, ब्रह्म ज्ञान देते हुए भगवान स्वयं बोलते हैं हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जन्म सुलभ है, किया वह कर्म के अनुसार सुलभ से प्राप्त होता है, सुदुर्लभम अत्यंत कष्टदायक भी है, अत्यंत दुर्लभ से मिलता, दुर्लभ ही मुश्किल से मिलना, सुदुर्लभ सुपरलेटिव डिग्री हो गया। क्यों 84 लाख योनि का पूरा चक्कर काटने के बाद इतना जन्म मृत्यु का चक्कर में होने के पश्चात जो है भगवान अत्यंत कृपा करके उस प्राणी को एक मनुष्य शरीर का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये प्राणी जन्म मृत्यु से अधिभौतिक आध्यात्मिक अधिभौतिक दैविक ऐसी कष्टों से गुजरते गुजरते बहुत कष्ट पाया है, इसको इस कष्टों से छुटकारा देने के लिए करुणा सिंधु भगवान उनके एक अवसर अवश्य देता है, परंतु अवसर कब देता है 84 लाख यून कितना करोड़ों वर्ष हमें बीत जाता हमें मालूम नहीं है, उसके पश्चात मनुष्य का जन्म देते हैं। और मनुष्य जन्म का ये प्रामुख्यता क्यों है, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारण, मनुष्य शरीर सुकल्पम इस प्रकार सुंदर बनाया गया, ये प्लवम एक नाव जैसा बनेगा, जिस प्रकार समुन्द्र को पार करना है हमें नाव का आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं, समुन्द्र को तैर कर पार करेंगे क्या, कोई हनुमान जी से वही हो सकता, सभी तो हनुमान नहीं बन सकते हैं। तो नाव जो समुन्द्र पार करने के लिए जिस प्रकार नाव का आवश्यकता है, नाव का सहारे हम समुन्द्र को पार सकते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो है भगवान का द्वारा ऐसा सुकल्पित है, एक ऐसा नाव बनेगा प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, या ऐसा नाव है जिनका कर्णधार जो है गुरु बनता है, क्योंकि गुरु इस शरीर का, इस नाव का कर्णधार बना है। भगवान बोलते मयानुकूल न भस्वतारितम, गुरु इस प्राणी का इच्छा इंचार्ज लिए बन गया, कर्णधार बन चुका है, इसलिए भगवान बोलते हैं मेरा अनुकूल। जब नाव समुद्र में चल रहा तो अनुकूल हवा रहने से नाव आगे बढ़ेगा, यदि प्रतिकूल हवा होने से क्या होता, गंगा माई की जय उधर डूब जाएगा। हा? तो भगवान बोलते हैं मयानुकूल नभस्वतारितम, मेरा अनुकूल मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद क्यों है, गुरु कर्णधार है, इसलिए मेरा आशीर्वाद जो अनुकूल हवा जैसा काम करके इस नौका रूपी शरीर को भवसागर रूपी समुद्र से पार करेगा। भवसागर का मतलब जानते हैं ना, भव का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु को भव बोलते हैं, भव का मतलब है जन्म मृत्यु है, और ऐसा अनंत है हमें मालूम नहीं है इसका अंत कब है, कब शुरू हुआ कब अंत हुआ हमें मालूम नहीं। जिस प्रकार समुद्र के देखने से समुद्र के उस पार हमारे को दिखाई देता ना अनंत है, इसी प्रकार जो है हमें मालूम नहीं ऐसे कितना लाखों करोड़ों दफा हम जन्म मृत्यु का सागर में घूमते हैं डूबते हैं, इसलिए भवसागर बोलते हैं, संसार भी बोलते हैं, संसार सागर भवसागर। ऐसा भवसागर को पार करने के लिए ये मनुष्य शरीर एक नाव जैसा काम करेगा, भगवान का आशीर्वाद एक अनुकूल हवा जैसा प्राप्त होकर इस भवसागर को पार करके, भवसागर जन्म मृत्यु का सागर पार करेंगे का मतलब क्या है, भगवत धाम जाने का हमें आशीर्वाद होता है। यदि भगवान पुमाप दिम ना तारे तो आत्महा, यदि मनुष्य शरीर मिलने का पश्चात भी यदि कोई प्राणी इस भवसागर को तरने का यत्न नहीं करते हैं तो अपना आप को आत्महत्या सदृश है, क्योंकि कोई ये आपको आश्वासन नहीं दे सकता कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ये आश्वासन केवल भक्तों के लिए है, जो भगवान का भक्ति में भगवान के श्री चरणों में मन लगाकर भक्ति करते हैं उनके लिए अवश्य आश्वासन मिल सकता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिल सकता है। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, भगवान और एक करुणा करके हमें और एक मनुष्य जन्म दे सकता है, अवसर देंगे। परंतु जो भगवान श्री हरि के भक्ति में नहीं है वो कभी ये सोच नहीं सकते कि उनको मनुष्य शरीर मिले। मनगढ़ंत जो अपना विचार से बोले नहीं मनुष्य शरीर के बाद दोबारा मनुष्य बनेगा, अपने इच्छा से कुछ भी बनाए लेकिन जो भगवान का नियम है वो चले गई है। हाँ, हम अपने इच्छा से कुछ भी बनाए लेकिन भारत इस राष्ट्र का जो नियम है वो नियम लागू होगा। यदि मैं बोलूं मुझे मालूम नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सिस्ट। इसी प्रकार जो है भगवान द्वारा प्रदत्त किया हुआ जो नियम है, धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म का जो नियम है भगवान द्वारा साक्षात प्रणीत किया गया, प्रदत्त किया गया है। इस नियमों को जो पालन नहीं करेंगे और वो नहीं बोल सकता हमें तो मालूम नहीं था जी, नहीं, मनुष्य जन्म लेने के बाद पता करना अवश्य है, अन्यथा मनुष्य जन्म लेने के बाद धर्म के बारे में यदि उसने न जानने के लिए यत्न नहीं किया, पशुओं में मनुष्य में अंतर क्या रहा, कोई अंतर नहीं है। पशु कभी नहीं बोलेगा ये धर्म क्या है भाई, हमें सत्संग बताओ, धर्म क्या है, भगवान क्या है, परंतु मनुष्य बोल सकता है। मनुष्य पशु योनि का पशु शरीर का धर्म नहीं है भगवत चिंतन करे, परंतु मनुष्य शरीर का धर्म है भगवत चिंतन कर सकता है। तो भगवान भी बोलते हैं इस मनुष्य शरीर का इतना प्रामुख्यता है। तो यही प्राचीन भरि को देवर्षि नारद समझा रहे हैं, परंतु प्राचीन भरि पूरा कर्मकांडी पूरा आगे जाकर 29वां अध्याय में आप पढ़ेंगे। प्राचीन भरि बोलते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था, हमारे जो गुरु लोग हमारा आचार्य लोग हमें बताए थे कर्मकांड करने का मत बताया, इसका मतलब यह है कि उनको मालूम नहीं था, जैसा उनको कहा गया था बताया। बोलता है कि ये भगवान देवर्षि जी हमें आप जो बता रहा हमारे को समझ में नहीं आ रहा, भौगिक ज्ञान। इसलिए नारद महर्षि एलेगोरिकल स्टेटमेंट एक जो है एक उदाहरण के तौर पर कथा के रूप में बताया, ताकि जो फिलॉसफी दर्शन है सीधा बताने से समझ में नहीं आता, उसी तत्व दर्शन को किसी एक कथा के रूप में बताने से फिर समझ में आएगा। पुरंजनोपाख्यान इसलिए बताया, परंतु फिर भी प्राचीन भरी को कुछ समझ में नहीं आया, बोलता मुझे पता नहीं, फिर अभी बता रहे हैं। ये सब कथा एक उदाहरण के तौर पर उपमा देकर समझाने से भी प्राचीन भरी को समझ में नहीं आ रहा। इससे हमें पता चलता है कि जो कर्मकांड में लगे हुए हैं उनका मन जो है भगवत ज्ञान में समझने के लिए अत्यंत कष्ट है। भगवत विषय को समझना कर्मकांड के लिए मन नहीं करेगा, तत्व विचार नहीं कर सकते हैं। यहां पर तत्व विचार जब तक नहीं कर सकते कोई लाभ नहीं मनुष्य शरीर का। पराभवस्तावद अभूत जातम यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्व। जब मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात जो है आत्म तत्व के बारे में यदि विचार ना करें, वो पराभव अपना जीवन से हार चुका है। पराभव जीवत अभूत जात, अभूत है वो, अभूत बालक जैसे हो जाएगा, उनको कुछ मालूम नहीं है। इस मनुष्य बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अपना आत्म तत्व का क्या है, जैसे सनातन गोस्वामी क्या पूछा था अमिकी है? इसी प्रकार हर मनुष्य का धर्म होता है, कस्यत्वं कुतायातः, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य कहां जाना है। यदि मनुष्य जन्म देने के बाद यदि विषयों की चिंता नहीं करते हैं, उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुनम छा सामान्य में वह पशु भी नराणाम, खाना सोना भय बच्चे पैदा करना समस्त प्राणियों में है, पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है, चार धर्म है, और कोई विशेष है मनुष्यों में। फिर मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान बड़ा क्यों समझता है, ये कामन है पशुओं में भी हमारा में, परंतु मनुष्य में क्या है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, परंतु मनुष्य धर्म के बारे में सोच सकता है परंतु पशु नहीं सोच सकता है। धर्मो विहीना पशु भी समाना, यदि मनुष्य प्राप्त योनि प्राप्त होने के पश्चात भी मनुष्य धर्म के बारे में विचार ना करे, भगवत तत्व के बारे में ना जाने, आत्म तत्व के बारे में ना विचार करें, वो पशु भी समान पशु है। भगवान के द्वारा दिए हुआ इतना अमूल्य योनि मनुष्य शरीर को उठा लेते, जिस प्रकार जो है एक मूर्ख को मणि दिया वज्र दिया परंतु उसको मालूम नहीं था, सोचे एक पत्थर है चमकीली पत्थर बल को वहां छोड़कर जाता, उसी प्रकार हो जाता है। ये अज्ञानता के कारण दुनिया सोचते नहीं मनुष्य जन्म में क्या रखा है, खाओ पियो आनंद रहो, चर्वक सिद्धांत, खाना पीना आनंद रहना तो पशु भी कर लेते हैं। ऋषभदेव महाराज भी यही बताते अपने पुत्रों को, नायम देहो दय भाजे नृलोके काष्ठान कामान अर्हते विड्भुजमते, हे पुत्रों जिसको जितने भी शरीरधारी प्राणी है उनमें जिनको मनुष्य शरीर मिला है उनको दिन रात केवल कष्ट करना नहीं कि विषय इंद्रियों को तृप्ति के लिए ही अपना भौतिक सुखों को भोगने की इच्छा पूरा करने के लिए ही दिन रात कष्ट मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय सुख जो है अर्हते विड्भुजमते, इंद्रिय सुख केवल मनुष्यों के लिए नहीं है। विड का मतलब मल, जानते हैं ना, विड विड का मतलब मल, जानते हैं मल, और भी पूरा विवरण से बोलना पड़ेगा। जो मल खाते हैं सूकर तथा कुत्ते हैं उनको भी इंद्रिय सुख है, समस्त प्राणी चाहे मच्छर से लेकर कोई भी प्राणी ब्रह्म पर्यंत जितने भी प्राणी हैं सभी के इंद्रिय सुख है, तभी तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई विशेष नहीं है। केवल इंद्रिय सुखों के लिए यत्न करना, मनुष्य शरीर का धर्म धर्म समझकर उस समय को गंवाना बुद्धिमता नहीं है, क्योंकि ये पशुओं को भी है। परंतु मनुष्य शरीर लेने के पश्चात उसका धर्म क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। भगवान ऋषभदेव जो भगवान विष्णु का अवतार है, वो बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्र के न सत्वम। ये पुत्रों, इस मनुष्य शरीर लेने के बाद उनको क्या है? तपस्या करना है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि एक तपस्या का अलग अलग युग में अलग अलग अर्थ आ जाता है। ये नहीं कि सब घर बार छोड़कर जंगल में जाओ, अकेले बैठे सो जाए, नहीं। आजकल का कलयुग में जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो पहले क्या आ जाता है? नींद आता है। हम कभी गायत्री करने बैठते तो आंख डूब जाता है। हमें ये कुछ क्षण नहीं कर सकते तपस्या, दीर्घ काल तक कौन अपना मन को अधीन करके समाधि स्थिति में रह सकता है? समाधि इतना आसान नहीं है। तपस्या वो है जब प्राणी मनुष्य जो है समाधि स्थिति में जाता, समाधि से पहले वो तपस्या करके कोई लाभ नहीं है, समय को गंवा रहे हैं। तपोदीयम, परंतु इस समय तपस्या का मतलब अपना ही स्वतः ही वॉलंटियरली भगवान का तृप्ति के लिए कुछ कष्ट को उठाना है। जिस प्रकार सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेकर 5 बजे तक सबको गहरी नींद आता है, किसी को उठो बोलो चादर और ज्यादा ओढ़कर सो जाएगा, परंतु उसी समय जो है भगवान का प्रीति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ये तपस्या है। जागे, स्नान करें, भगवान के दर्शन के लिए आ जाएं। मंगल आरती में, मंगल आरती में भगवान का मंदिर में हम 7 बजे 12 बजे शाम को संध्या काल में आकर क्या बोलते हैं? हम लोग भगवान के दर्शन के लिए चलते हैं भाई, बोलते हैं कि नहीं? मंगल आरती में आप बोलते हैं मंगल आरती में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, मंगल आरती के लिए जाते हैं। दिन में जितने भी आरती है केवल प्रातः काल में जो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता उसी को मंगल आरती बोलते हो, बाकी को मंगल आरती कहते हैं आप? इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त का अत्यंत विशेषता है। आचार्य लोग कहते हैं जब प्रातः काल में भगवान मंगला आरती में हम भगवान के सामने आते हैं, भगवान देखते हैं कि कौन कौन मेरे पास आया है। उस समय जो है भगवान हमें देख रहे हैं, उसके बाद जो है 7 बजे 12 बजे हम भगवान को देख रहे हैं। तो हम किसको चाहते? भगवान हमें देखना चाहते हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो अपने ऊपर निर्भर है। तो प्रातः काल का मंगलार्च माना यह सब तपस्या है, एकादशी है। सभी 3-4 दफा खाकर मस्त से रहना चाहते हैं, परंतु एकादशी में अल्प मात्र से लेकर 1 दफा खाएं और ज्यादा समय भगवान का नाम का स्मरण में, भगवत पाठन में उसका समय को व्यतीत करना चाहिए, यह तपस्या है। जन्माष्टमी में जो भक्त है, भगवान का आविर्भाव का प्रकट होने का दिवस होता है, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे भी भगवान श्रीहर का कभी प्रकट होने का दिवस है, अवतार का, ऐसे दिवस में हम व्रत रखते हैं, उस 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, भगवान का संतृप्ति के लिए आज मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, यदि संभव है तो जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, यह तपस्या है। साधारण प्राणी दिन भर 24 घंटा कम से कम 4-5 लीटर पानी पी लेते हैं, परंतु हम उस दिन जल एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे भगवान का प्रीति के लिए, उसमें हमारे लिए नहीं है। यह सब तपस्या है, तपो दिव्यम। ऐसा तपस्या करने से क्या होता है? हमारा हृदय दिव्य हो जाता है। तपस्या द्वारा ही मन का शुद्धि होता है। हरिनाम जब जब करते हैं, समय लेकर जब करते हैं, वो भी एक तपस्या है। ऐसे तपस्या द्वारा दिव्य हो जाता हमारे हृदय का। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऐसा मन का शुद्धि हो जाएगा, उस समय भगवान का श्री चरणों का सेवा करने के लिए मन लगेगा, अधिकार भी बन जाता है। ऐसे भगवान का श्री चरणों का सेवा से शुद्धेद, जब शुद्ध हो जाता हमारा मन, भगवान का सेवा करने से इंद्रियों का शुद्धि होता है। रूप गोस्वामी भी कहते हैं ना, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेना ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऐसे समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवा करना ही भक्ति, ऐसा मन वाक कर्म, 15 इंद्रिय हैं, उनको सुलभ से मन वाक तथा कर्म त्रिकरण शुद्धि से जब भगवान का सेवा करते हैं वही भक्ति है। ऐसी भक्ति से हमारे को क्या मिलता है, फलस्वरूप तत्परत्वेन निर्मलम। ऐसा भगवान श्री हरि का सेवा करने से हमारा तत्परत्वेन, हमारे को मन का इंद्रियों का निर्मल हो जाता है, इंद्रियों का शुद्धि हो जाता है। इस समय बोलेंगे हम तो रोजाना साबुन से साफ कर स्नान करते हैं, शुद्धि क्यों नहीं है, वो तो बहिरंग शुद्धि हो गया, परंतु अंतर शुद्धि कहाँ होना। हमारा अंदर इंद्रिय है, विषय इंद्रिय है, सबको मालूम है, मन है सबको मालूम है, देखा है मन को, कोई देख सकते हैं मन है, कोई बोल सकता मेरे में मन नहीं है, बुद्धि है, कोई ऐसा बोल सकता मेरे को बुद्धि नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, परंतु बुद्धि को नहीं देख सकता, ग्राह्य नहीं है ये। ऐसी इंद्रियों को भौतिक रूप से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मता है, सूक्ष्म रूप से उनको शुद्धि कैसा होगा, हरिनाम संकीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा श्री हरि का नाम का उच्चारण से, श्री हरि का भगवान का सेवा करने से इंद्रियों का शुद्धि होता, तत्परत्वेन निर्मलम। जब ऐसा इंद्रियों तपस्या द्वारा भगवान श्री हरि का नाम का उच्चारण कीर्तन स्मरण द्वारा जब हमारा इंद्रियों का शुद्धि हो जाता, शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, उस समय जो है अनंत ब्रह्म सौख्य अनंत अत्यानंद प्राप्त होता, जो का अंत नहीं है, अनंतम है। परंतु आनंद का अनुभव तब होगा जब पूर्णतः भगवान का श्री चरण में समर्पण करना है, समर्पण का आवश्यकता है। भगवान भी यही बोलते ना, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रजा, गीता में भी बोले हैं, भगवान उद्धव के भी बताते हैं, पूरा समझाने के पश्चात जो है पूरा ज्ञान देते हैं, 11वां स्कंद में अत्यंत पूरा 11 स्कंद जो है बहुत ज्ञान का ही है, पूरा ज्ञान देते हैं। तस्माद उद्धव त्रिज्या चोदनम प्रचोदनम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च श्रोतव्यम था श्रोतमेव च, बोलते उद्धव अभी तक मैं जो कुछ बोला हूं, जो सुना है, जो सुनने वाले है, आगे हैं, जो वेदों का मंत्र जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए, जो प्रवृत्ति मार्ग का और निवृत्ति मार्ग का जो कुछ बताया सब कुछ छोड़ दो, विच्छुज्या मामेकमेव शरणम करके सब छोड़कर क्या कहना, मामेकमेव शरणम आत्मानाम सर्वदेहिनाम, मेरा केवल मेरा शरण ले लो, क्योंकि इस भाव से, किस भाव से, मैं समस्त भूतों का आत्मा हूं। वही भगवान वही बोलता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, पूरा शरण लेना भगवान का। कैसे शरण का मतलब कैसी है, शरणागति का कैसा है, हम बोलते हैं हम शरण लेते हैं, शरणागति का कैसा डिफाइन करेंगे हम, अच्छी बात है। रूप सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में बहुत अच्छी सुंदर ढंग से शरणागति के बारे में बोले, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे अवरणम तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के बारे में श्रील सनातन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प, जो भी भगवान का सेवा में अनुकूल है उसको स्वीकार करें, प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान का सेवा में भगवान का भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करें। उदाहरण के लिए कभी हो जाता है हम लोग जो मंदिर में है तो ठीक है, जो बाहर रहते हैं गृहस्थ है, संडे का प्रोग्राम 3 बजे है, कोई उसी समय जो बोलते 2:30 बजे या 2 बजे आएगा एक मित्र या भाई या पिताजी आएगा, बेटे बहुत दिन हो गए मिला नहीं, चलो आपसे बैठकर बात करने के लिए आया, अभी आपके ऊपर निर्भर है, या पिताजी या अपना बंधु या भाई से बात करते मंदिर का प्रोग्राम को छोड़ देंगे, या उनको बोले नहीं कि अभी दोबारा मिलेंगे, मंदिर जाना आवश्यकता है, भगवान का दर्शन करना है, सत्संग में भाग लेना, सत्संग में रहना मुझे आवश्यकता है, ऐसा बोलकर तिरस्कार करके मंदिर में आना है, क्या करेंगे, अपना पिताजी की या भाई को बोलेंगे भाई दोबारा आ जाओ बोलेंगे या मंदिर में आएंगे क्या करेंगे बोलो। यदि आप सोचते हैं कि भगवान, यदि हम हमारा विश्वास है कि भगवान सदा हमारा साथ है तो भाई बंधु तब कुछ तिरस्कार कर सकते हैं। जब यमराज आता है ना भाई आएगा ना बंधु आएगा ना पति आएगा ना पत्नी आएगा ना पिता ना माता, कोई हमारा साथ नहीं आएगा, हम अकेले आए हैं अकेले जाएगा। सभी का माता पिता का सेवा धर्म करना है, परंतु जब भगवान का धर्म को निभाने का समय आता है उस समय माता पिता का धर्म, जैसे कि एक दूसरा हाइयर स्थाई के लिए, उच्च स्थाई के लिए निम्न स्थाई को तिरस्कार कर सकते हैं हम। इसी प्रकार जो है यदि हम भगवान के चरणों में अर्पण करने का निश्चित किया है, माता पिता या भाई बंधु या मित्र आता है बोल सकते हैं कृपा करके क्षमा करें, इस समय मुझे भगवान का दर्शन के लिए जाना, सत्संग में जाना है, आवश्यकता है, इसलिए मैं कभी आपसे फोन करूंगा फिर दोबारा मिलकर बात करेंगे। प्रतिकूल वर्जनम, यदि हमारे ऊपर भगवान का शरण लिया हम ये प्रतिकूल को जो भी है तिरस्कार करना ही पड़ेगा। सामाजिक तौर पर समाज में है हम समाज में चलना है, अंत समय में कोई समाज समाज हमारे साथ नहीं देगा। तो प्रतिकूल वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो, समय हो गया 5 मिनट लेता हूं। हमारे को पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे को रक्षा करेंगे, पूर्णतः विश्वास होना चाहिए भक्तों को। गोपतृत्व वर्णन तथा जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे कोई भी शंका आ जाता माता पिता के पास जाकर पूछते हैं माँ ये क्या है, उनको विश्वास है बच्चों को कि माता पिता हमारे को ठीक रास्ता ठीक दर्शन देंगे गाइड करेंगे। इसी प्रकार हमारे को विश्वास होना चाहिए हर समय भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे को दर्शन देते हैं, हमारे को डायरेक्शन दे गाइडेंस देते हैं। आत्मनिक्षेप सरेंडर होना है, कार्पण्य दीनता होना चाहिए भक्तों में, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ये 6 प्रकार के शरण, इस प्रकार भगवान का श्रीहरि का शरण लेने से हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा होने के लिए संभावना है। शरणागत का पूरा आवश्यकता है, भगवान भी बोलते मामे कयो शरणम देह नाम सर्व आत्मा नाम सर्व देह नाम, भगवान कहीं भी कोई भी शास्त्र है कोई भी जहां भी भगवान का वाणी है वही बोलेंगे शरण लेना। पहले हम श्री गुरु चरणों का श्री गुरु महाराज के चरणों का आश्रय लेकर गुरु महाराज को हम समर्पण करना चाहिए, तभी गुरु महागुरु का समर्पण के बिना भगवान का समर्पण नहीं हो सकता। गुरु हमारे के माध्यम है, हमारे को भक्ति चाहिए केवल गुरु द्वारा मिलता है। हम रोजाना गुरु वंदन में क्या बोलते हैं श्री गुरु चरण पद्मा, हाँ सदमा का मतलब स्थान है वास है अबोर्ड है, भक्ति का स्थान श्री केवल श्री गुरु का चरण कमलों में है। कमल किधर रहता है, पानी के बीच में रहता है, वो चरण कमल है। इसे मतलब हम वो कमल का चरण कमल तक पहुंचने के लिए भक्ति रूपी सरस या समुद्र से पार करना पड़ेगा हमें। सब कहना मतलब है हमें पूर्ण दीन से दीनता से गुरु का शरण लेना पड़ेगा और तभी पूरा बड़ा अर्थदायक है वो जो हम रोजाना गुरु वंदन का करते हैं, एक एक शब्द का बड़ा अर्थ है। तब गुरु महागुरु का कृपा से गुरु महाराज का कृपा से हमारे को आत्मिक ज्ञान मिल सकता है, तब जो है भगवान का सन्निधि में जा सकते हैं। गुरु का तिरस्कार से हमारे को नहीं है। जिस हम बिल्डिंग बनाया बिल्डिंग बन गया तो अभी क्या फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन को निकाल देता हूं, दीवार रहेगा बुनियादी जो फाउंडेशन है उसको हटा दिया दीवार कहां रहेगा। हमारा भक्ति का फाउंडेशन कहां है, गुरु। और जब मैं भक्त बन गया गुरु को निकाल दिया गंगा माई की जाए कुछ नहीं होगा। तो समय हो रहा बोलने तो ज्यादा बोल काफी बोलने का है, आधा ही बोल पाया, यहाँ पर समाप्त करते हैं। समय को देखना है और किसी को आलोचना है या किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं, आलोचना भी स्वीकार है।
हरे कृष्ण। महाराज जी, आप जैसे तात्पर्य में जैसे लिखा है कि जैसे राजा के मरने के बाद रानी को रोना चाहिए, गुरु के मरने देह त्याग करने संसार छोड़ने के बाद शिष्य को रोना चाहिए, तो कुछ बोलना चाहेंगे इस
पर? जिस प्रकार हमारा माता पिता जाते हैं, हमारे को दुख होता है, उनसे विलग होने के लिए हमारा दुख भी होता है। अच्छा, तो दुख से जब दुख होता तभी रोना आ जाता है, विलाप कर रहे हैं कि हम उन्हें संगत नहीं मिलता, भौतिक रूप से संगत नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार पत्नी, पति जो है पत्नी को गुरु माना जाता है, और यहां राजा को दिया है रानी जो है गुरु, क्यों? राजा उस रानी का पति था। इसी प्रकार जो है शिष्य भी अपना गुरु का शरीर त्याग हो जाता है, उस समय गुरु को, शिष्य यदि गुरु से प्रति प्रेम है अवश्य ही वो रोएगा। यदि मेरे पिता के प्रति, मेरे को माता पिता के प्रति यदि मेरे को प्रेम है, और जब वो मर जाते हैं शरीर छोड़ते हैं तब रोना आएगा, जब प्रेम ही नहीं तो कहाँ रोएगा, मानते हैं कि नहीं? यदि गुरु के प्रति भी हमारे को प्रेम है, हमारे को अवश्य, क्योंकि आंसू हमारा आज्ञा लेकर नहीं आता है, हमारा भाव के साथ आंसू आ जाता है। फिलॉसफी अपना अलग जगह है, नहीं रोना नहीं चाहिए, लेकिन जब समय आता तो आंसू, किसी का फिलॉसफी नहीं सुनता, आंसू आ जाता है। मैं अपना ऊपर भी गुजरा था, हमारा माता श्री का देहांत हुआ, तब तक तो मैं कुछ नहीं है, मैं फिलॉसफी बोलते नहीं, ये तो आया है, कोई बात नहीं, जाने जाते से ध्रोम रुचु, घर में सबको बोलते रहा। जब अस्थि का लेकर हरिद्वार में गया पिंडदान करने, चार पिंड तक मेरा कुछ नहीं हो, जब यमपिंड, जो अंत में यमपिंड ऑफर दिया जाता है, वो यमपिंड को मैं उस जापानी में छोड़ना था, उस समय मुझे पता ही नहीं चला, मेरे से हाथ एक आमने लगा, बात करने, ब्राह्मण से बात करने की शक्ति नहीं रहा, आंसू आते रहा। कहने का है कि जो आंसू हमारा आज्ञा लेकर नहीं, जहाँ प्रेम है अपना आप ही आ जाता है। ये आंसू क्यों आ जाता है? भौतिक रूप से हमारा संयोग नहीं रहता, माता का जिसी समय याद रखेंगे हमारे को याद आता है। इसी प्रकार जो है गुरु का जब भी स्मरण करेंगे, गुरु हमारा हृदय में रहते हैं, हम ध्यान स्तुवंतस्य यशस्त्र संजम है ना, हम गुरु को हमेशा ध्यान करते हैं, उस मंत्र जब जब करते हैं गुरु का रूप को ध्यान करते हैं, हम गुरु सदा हमारे साथ रहते हैं वाणी द्वारा, बापू से नहीं रह सकता। इस भौतिक जगत में अभी गुरु महाराज होते हुए भी हमारे साथ सदा अकेले नहीं रह सकता, जब जाते हैं बापू से हमारे को विलग होना पड़ता है, इसलिए हमको कष्ट लगता है, उस कष्ट के कारण दुख होकर आंसू आ जाए, इसलिए रोना बोलते हैं, पश्चाताप। हमारे को एक रोने का मतलब है हमारे को उनका विलग होने के लिए, उनका अभाव महसूस हो रहा, अभी हम गुरु से नहीं मिल सकते हैं, परंतु वाणी से हमेशा मिल सकते हैं। गुरु से प्रेम है तभी आंसू आए, रोएगा, नहीं तो प्रेम नहीं तो रोएगा नहीं है। आप भौतिक जगत में भी जा सकते हैं, ठीक है प्रभु जी, प्रेम की बात है और कुछ नहीं। और किसी को समाप्त करें, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।